लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहाँ तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवारीय आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन प्रेरितिक निवास के पुस्तकालय से सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo le catechesi sulla preghiera. In questa catechesi vorrei soffermarmi sulla preghiera di contemplazione.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हम प्रार्थना पर अपनी धर्म शिक्षा माला जारी रखते हैं। आज की धर्म शिक्षा माला में मैं अवलोकन ध्यान प्रार्थना पर चिंतन करना चाहूँगा। अवलोकन मानव जीवन का वह आयाम है जो एक तरह से नमक की भांति है, लेकिन यह अब तक प्रार्थना का रूप नहीं बन पाया है। यह हमारे जीवन में स्वाद लाता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने दिन को स्वादिष्ट पाते हैं। हम सुबह में उगते हुए सूरज की ओर अपनी निगाहें फेरते हुए उसका अवलोकन कर सकते हैं, या हम पेड़ों को निहारते हुए उन पर चिंतन कर सकते हैं जो बसंत में नई पत्तियों से अपने को ढक लेते हैं। हम संगीत सुनते हुए चिंतन कर सकते हैं, या पंछियों के कलरव, पुस्तक पढ़ते हुए, कोई कलाकृति को देखते हुए, या मानव चेहरे की उत्कृष्ट कृति को देखते हुए चीजों का अवलोकन कर सकते हैं। कार्लो मारिया मार्तिनी को जब मिलान का धर्माध्यक्ष बनाया गया था तो उन्होंने अपने प्रथम प्रेरितिक पत्र जीवन का चिंतनशील आयाम में इस बात का जिक्र किया, सच्चाई यह है जो लोग शहरों में रहते हैं जहां सारी चीजें हम कह सकते हैं अपने में कृत्रिम हैं, जहां सभी चीजें कार्यात्मक हैं, हम अवलोकन करने की अपनी क्षमता को खोने के जोखिम में आ जाते हैं। अवलोकन का संदर्भ किसी चीज को करने से नहीं, अपितु एक तरह से उस चीज का अंग बनना है, उस बात में प्रवेश कर उसके साथ एक हो जाना है। अवलोकन के तहत चिंतनशील होना हमारी आंखों में नहीं बल्कि हमारे हृदय पर निर्भर करता है।
E qui entra in gioco la preghiera come atto di fede, di amore, come respiro della nostra relazione con Dio.
यहाँ हम प्रार्थना को विश्वास की क्रिया और प्रेम के रूप में अपने सांसें स्वरूप पाते हैं जो ईश्वर से संयुक्त होता है। प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध करता है, इसके साथ ही हमारी निगाहें तीक्ष्ण होती हैं। परिणाम स्वरूप हम सच्चाई को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा इस हृदय परिवर्तन को प्रार्थना के प्रभाव स्वरूप वर्णन करती है जो कूरे ऑफ आर्स के प्रसिद्ध साक्ष्य में व्यक्त होता है। अवलोकन विश्वास की निगाहों से यीशु को देखना है, मैं उनकी ओर देखता हूँ और वे मेरी ओर देखते हैं। यीशु का प्रदीप्त चेहरा हमारे हृदय की आंखों को प्रकाशित करता है और हम सारी मानवता के लिए चीजों को सच्चाई और करुणा के प्रकाश में देखने की शिक्षा पाते हैं। सारी चीजें हमारे हृदय की गहराई से निकलती हैं, जहां हम यह अनुभव करते हैं कि हमें प्रेम से देखा जाता है। इस तरह सच्चाई एक अलग ही नजरिए से देखी जाती है। संत पापा ने कहा,
Io guardo lui e lui guarda me.
मैं उन्हें देखता हूँ और वे मुझे देखते हैं। प्रेम में अवलोकन ऐसा ही है, एक अति अतरंग प्रार्थना है जिसमें हम अधिक शब्दों को नहीं पाते हैं। यहाँ निगाहें ही काफी हैं। इसके द्वारा हम इस बात से अपने को विश्वस्त पाते हैं कि हमारा जीवन उनके अनंत और निष्ठामय प्रेम से सारा भोर है, जिससे कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि यीशु इस नजर में माहिर थे। उनके जीवन में समय, स्थान, शांति और प्रेमपूर्ण संबंध की कमी कभी नहीं थी, जिसके द्वारा वे अपने जीवन की कठिनाइयों से विचलित नहीं हुए, बल्कि अपने में सबल बने रहे। उनके इस रहस्य का राज अपने स्वर्गीय पिता से उनका संबंध था। उन्होंने यीशु ख्रिस्त के रूपांतरण का उदाहरण देते हुए कहा कि सुसमाचार इस घटना को यीशु के प्रेरितिक कार्य के केंद्र बिंदु पर रखती है, जहां वे अपने को विरोध और तिरस्कार से घिरा हुआ पाते हैं। समय उनके बीच में बहुत से शिष्यों ने उन्हें नहीं समझ पाया और उनका साथ छोड़ दिया। बारहों में से एक ने उन्हें धोखा देने की सोच ली। यीशु खुले रूप में अपने दुख भोग और मृत्यु के बारे में जिक्र करते हैं, जो यरूशलेम में घटित होने वाली थी। इस परिदृश्य में वे अपने शिष्यों पेतरुस, याकूब और योहन के साथ पहाड़ की चोटी में चढ़ते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार हमें कहता है, उनके सामने उनका रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उज्जवल हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। यह ठीक उस समय हुआ जब यीशु अपनों के द्वारा नासमझी के शिकार होते और उनके चेले उन्हें छोड़कर जा रहे होते हैं। नासमझी की इस धुंधली एक भावर परिस्थिति में हम एक दिव्य ज्योति को चमकता हुआ पाते हैं। यह पिता की प्रेममयी ज्योति है, जो पुत्र के हृदय को भर देती, जो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को रूपांतरित कर देता है।
Alcuni maestri di spiritualità del passato hanno inteso la contemplazione come opposta all'azione.
कुछ आध्यात्मिक गुरुओं ने अतीत में अवलोकन को कार्य के विपरीत समझा और उन्होंने उन बातों को बढ़ावा दिया जो लोगों को दुनिया की तकलीफों से दूर करता है, जिससे वे अपने को प्रार्थना में संलग्न कर सकें। वास्तव में यीशु ख्रिस्त अपने व्यक्तित्व में, जैसे कि हम सुसमाचार में पाते हैं, उनकी प्रार्थना और कार्य में कोई अंतर नहीं है। सुसमाचार और यीशु ख्रिस्त में हम कोई विरोधाभाव नहीं पाते हैं। यह नियोप्लाटोनिक दर्शन शास्त्र से प्रभावित है, जो इसमें विरोधाभाव उत्पन्न करता है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से एक द्वितीयवाद शामिल है, जो ख्रिस्तीय संदेश का हिस्सा नहीं है। संत पापा ने कहा,
ed è quella di seguire Gesù sulla via dell'amore. Questo è l'apice, il centro di tutto.
हमारे लिए केवल एक ही महान निमंत्रण है, जिसे हम सुसमाचार में पाते हैं, और वह प्रेम के मार्ग में यीशु ख्रिस्त का अनुसरण करना है। यह सारी चीजों का केंद्र बिंदु और चरम सीमा है। इस संदर्भ में हम करुणा और चिंतन को एक ही रूप में पाते हैं, जो एक ही तथ्य के बारे में कहता है। क्रूस के संत योहन ने विश्वास किया कि विशुद्ध प्रेम का एक छोटा कार्य अन्य दूसरे मिश्रित कार्यों की अपेक्षा कलिस्सा के लिए अति उपयोगी है। प्रार्थना से उत्पन्न होने वाले कार्य यद्यपि अपने में गुप्त और शांतिमय प्रेम के कार्य होते, लेकिन इसके द्वारा एक ख्रिस्तीय महान चमत्कार कर सकता है। यह अवलोकन चिंतन प्रार्थना का मार्ग है, जहां मैं उन्हें देखता हूं और वे मुझे देखते हैं। यह हमारे लिए यीशु के साथ शांतिमय प्रेम वार्ता है, जो कलिस्सा के लिए महान कार्य करता है। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
सिन नोमिन डोमिनी बेनेडिक्टम एटेरियम नोस्ट्रम इन नोमिने डोमिनी benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने मई की मैराथन प्रार्थना में दुनिया भर के मरियम तीर्थ स्थलों की अगुवाई में रोजरी प्रार्थना के दैनिक लाइव प्रकाशन में शामिल होने और प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। वाटिकन स्थित प्रेरितिक भवन के पुस्तकालय से बुधवार आमदर्शन समारोह के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने इटली के विश्वासियों का अभिवादन करने से पूर्व कहा, हम मई के इस महीने में दुनिया भर के मरियम तीर्थ स्थलों की अगुवाई में महामारी के अंत और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की पुनः शुरुआत के लिए रोजरी प्रार्थना का पाठ करते हैं। आज की मरियम प्रार्थना दक्षिण कोरिया के नामयांग में रोजरी की धन्य कुंवारी मरियम तीर्थालय से की जाएगी। आइए हम इस तीर्थालय में एकत्रित हुए बच्चों और किशोरों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। विदित हो कि रोज रोम स्थानीय समय अनुसार शाम 6 बजे रोजरी प्रार्थना की जाती है। यह वाटिकन न्यूज वेब पोर्टल, फेसबुक और यूट्यूब चैनलों पर या दुनिया भर के वाटिकन के साथी संगठनों द्वारा रेडियो या टेलीविजन प्रसारण के माध्यम से लाइव या बाद में भी लिंक के साथ जुड़कर प्रार्थना की मैराथन में शामिल हो सकते हैं। 14 मई को भारत की स्वास्थ्य की माता मरियम वेलांकनी से रोजरी प्रार्थना की अगुवाई की जाएगी, जिसमें सभी वैज्ञानिक और मेडिकल शोधकर्ता संस्थानों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की जाएगी। उधर संत पापा फ्रांसिस रोम में रहने वाले म्यांमार के कैथोलिकों के लिए 16 मई की सुबह 10 बजे प्रभु के स्वर्गारोहण महोत्सव संत पेत्रुस महागिरजा घर में ख्रिस्तियाग अर्पित करेंगे। संत पापा फ्रांसिस ने म्यांमार में संवाद और शांति के लिए कई बार अपील किया है। 1 फरवरी के सैन्य तख्तापलट के बाद से देश संघर्ष का सामना कर रहा है। म्यांमार के लिए संत पापा का यह संकेत माता मरियम के महीने के दौरान आता है। संत पापा ने दुनिया भर के तीर्थ स्थलों को शामिल करते हुए महामारी के अंत के लिए इस महीने को समर्पित किया है। इस बीच म्यांमार के कार्डिनल चार्ल्स बो ने देश में शांति, न्याय और मानवीय गरिमा के लिए कैथोलिकों से इस महीने के दौरान रोजरी प्रार्थना करने और पवित्र सैक्रामेंट की आराधना में भाग लेने का आग्रह किया। रविवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में स्वर्गीय रानी प्रार्थना के बाद संत पापा फ्रांसिस ने म्यांमार की कैथोलिक कलीसिया की पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि वे उनके दिल के करीब हैं। उन्होंने कहा कि यह हमें हमारे दैनिक रोजरी में म्यांमार की शांति के लिए एक प्रणाम मरिया प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता है। संत पापा ने कहा, जब हम जरूरत में या कठिनाई में होते हैं तो हम में से प्रत्येक अपनी माँ की ओर मुड़ जाता है। इस महीने हम माता मरियम को म्यांमार के सभी नेताओं के दिलों में बात करने के लिए कहते हैं, ताकि वे वार्तालाप और सुलह एवं शांति के रास्ते पर चलने का साहस जुटा सकें। उधर दक्षिण सूडान के रुम्बेक धर्म प्रांत के नवनियुक्त धर्माध्यक्ष क्रिस्टियन कालासारे केन्या में नैरोबी के एक अस्पताल में दोनों पैरों में गोली लगे घाव की चिकित्सा कराते हुए रुम्बेक के लोगों को उनकी एकजुटता और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने दुनिया भर के दोस्तों और शुभ चिंतकों को भी धन्यवाद दिया जो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष नैरोबी स्थित कैथोलिक मीडिया हाउस द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो संदेश में बोल रहे थे। विदित हो कि 25 अप्रैल रविवार को तड़के रुम्बेक में अपने ही घर में इतालवी मूल नवनियुक्त धर्माध्यक्ष क्रिस्टियन को सशस्त्र लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष ने कहा, मैं सूडान और दक्षिण सूडान में मेरे बड़े भाइयों के शक्तिशाली रुख और एकजुटता को स्वीकार करता हूं। वे एक सदस्य पर हुए इस हमले को पूरी कलीसिया के हमले के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा, यह दक्षिण सूडान के लोग नहीं है जिन्होंने मुझे गोली मारी, ये दिनकास भी नहीं है जिन्होंने मुझे गोली मारी, यह सिर्फ उन लोगों का एक समूह है जिनके पास कोई मानवीय मूल्य नहीं है और अपने समुदाय के लिए एक शर्म की बात है। मैं समुदाय के नेताओं और स्थानीय प्रमुखों को अपने समुदाय के हिंसक सदस्यों को बाहर निकालने और प्रथागत कानून को लागू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। लेक राज्य की जांच कमेटी के प्रमुख ने जांच में इस तथ्य की ओर इशारा किया कि शूटिंग की घटना विशुद्ध रूप से कलिसिया की राजनीति में एक प्रशासनिक मुद्दा था, जो दक्षिण सूडान धर्म प्रांत के लोगों के लिए धर्माध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित थी। लेक राज्य अधिकारियों द्वारा आयोजित किए जा रहे जांच में 12 अन्य संदिग्धों में 3 पुरोहित भी शामिल हैं। उधर भारत में कई कैथोलिक संस्थाएं कोविड-19 संक्रमणों की विनाशकारी दूसरी लहर के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई में अपनी सुविधाओं को उपलब्ध करा रही हैं। पूर्वी भारत के झारखंड राज्य की राजधानी महाधर्म प्रांत ने कोविड-19 रोगियों और उनके परिवारों के दर्द और पीड़ा को कम करने में मदद करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। इसने शहर के सबसे बड़े अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल रिम्स में भर्ती मरीजों के रिश्तेदारों के लिए मुफ्त भोजन सेवा शुरू की है। यह सेवा रांची कैथोलिक यूथ द्वारा अपने अध्यक्ष कुलदीप तिर्की के नेतृत्व में अस्पताल के मैदान में आयोजित की जा रही है। दाल, चावल, चिकन और सब्जियों के साथ एक गर्म पैक लंच और बोतल बंद पानी जरूरतमंद लोगों को परोसा जा रहा है। पहल का उद्घाटन करते हुए महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो ने कहा, हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए भले रहे हैं और इस भलाई कम भाग्यशालियों के साथ साझा करने की जरूरत है, खासकर इस कठिन क्षण में। सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मास्करेनहास ने कहा कि देश बहुत कठिन समय से गुजर रहा है, जहां महामारी रुकने का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। सामाजिक और सार्वजनिक सुरक्षा के सरकारी नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, कलीसिया गरीबों के लिए काम करना जारी रखेगी। हम अच्छे लोगों की उदारता के कारण ही जरूरतमंदों की मदद करने में सक्षम है। कलीसिया इस सेवा को दैनिक रूप से जारी रखेगी, क्योंकि रोगियों की देखभाल करने वालों के पास न तो अपने लिए समय है और न ही अपने लिए भोजन तैयार करने के संसाधन हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।